नमस्कार दोस्तों, 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी मुंबई की एफएम गोल्ड प्रसारण सेवा में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम छूलो आसमान में आपसे रूबरू होंगे विश्व वेदांता स्कूल के डायरेक्टर एवं प्रिंसिपल श्री अक्षय कुमार। इनसे बातचीत करेंगे नजारा टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर, आईबीजी के प्रेसिडेंट और फॉर द रिपब्लिक ऑफ माली के ऑनररी काउंसिल विकास मित्तरसेन।
आज हमारे साथ हैं अक्षय कुमार जी। ये हैं डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल विश्व वेदांता स्कूल। ये यूनिक स्कूल है, ये है रायपुर में, छत्तीसगढ़।
जी हाँ।
तो आइए, वेलकम अक्षय जी। ऑल इंडिया रेडियो आप आए काफी दूर से, थैंक यू फॉर कमिंग।
बहुत ही धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं चाहता हूँ कि हम बता पाएं हमारे स्कूल में क्या कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम के थ्रू मैं मासेस तक पहुँच पाऊँ।
आगे का माहौल बनाने के लिए एक अच्छा गाना सुना दीजिए।
पहला खुमार नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार कर तू आसमान जमीन, कहो यारो क्या करूं क्या नहीं। पहला नशा पहला खुमार नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार
रह
ये आपके प्रोफाइल में लिखा है कि ये नया टाइप का एजुकेशन है, आपको एजुकेशन लैंडस्केप चेंज करना है
जी।
तो क्या डिफरेंस है नॉर्मल स्कूल्स और आपके स्कूल में?
जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी एक ट्रेंड चला हुआ है कि मार्क्स बढ़ा के देना है। इस साल हमने देखा कि 10वीं बोर्ड में ICSE बोर्ड में बच्चों को 100% मार्क्स भी आए हैं।
अच्छा।
और ये बोर्ड्स कर रहे हैं और साथ ही साथ बहुत सारे स्कूल्स भी कर रहे हैं, और हमारा स्कूल भी इस चीज़ का एक शिकार था। 2014 में जब मैं स्कूल को ज्वाइन किया तब मैंने देखा कि मार्क्स बहुत बढ़ा चढ़ा के दिए जा रहे हैं, इतना बढ़ा चढ़ा के कि बच्चे का अगर 20-25 मार्क्स भी आया है तो उसको 70-80 मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ देख के समझ में आया कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ तो ख़राब चल रहा है जिसको हमें सुधारने की ज़रूरत है। तो हमने इसका एक दृढ़ निश्चय लिया कि हम जो भी हो सच बताएंगे और हम कोई बच्चे को पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो हमारे स्कूल में खास यही है कि हम सच बताएंगे और बच्चे जहां हैं वहां से उन्हें आगे लेके जाएंगे। इसके साथ चलते ही हमने ये भी देखा है कि बच्चों में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है कि वो आगे बढ़ें और आगे सीखें। इस चीज़ को हम ध्यान रखते हुए ये चाहते हैं कि बच्चे इंडिपेंडेंट लर्नर बने, कक्षा 8वीं 9वीं तक पहुँचे तब तक के वो बोलें कि हम खुद से सीखना चाहते हैं और हम खुद से पढ़ लेंगे आगे, और शिक्षक एक फैसिलिटेटर के रूप में उनका साथ दे। इसके साथ ही हमने ये किया है कि हम 21वीं शताब्दी यानी कि 21st century स्किल्स भी साथ में करिकुलम में इंटीग्रेट करने की कोशिश की है, और हम चाहते हैं कि बच्चे इन स्किल्स के साथ आगे बढ़ें जिससे वो 21वीं शताब्दी के जॉब्स के लिए तैयार होंगे और उसके साथ वो अच्छी ज़िंदगी और अच्छी लाइफ देख सकेंगे।
इसके बारे में और पूछता हूँ, पहले ये बताइए गोइंग बैक टू द स्कूल कि स्कूल्स को क्या बेनिफिट है मार्क्स बढ़ा बढ़ा के, उनकी कोई रैंकिंग बढ़ती है या उनको गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है ज़्यादा मिलता है, क्यों करते हैं स्कूल्स?
जी, तो ये देखेंगे कि प्राइवेट स्कूल्स तो एक बिजनेस है, अब बिजनेस में ये है कि सबसे अव्वल कौन, जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं उन स्कूल का रिजल्ट अच्छा है, मतलब वो स्कूल अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं तो बच्चे ज़्यादा आते हैं। और भारत में हम देखते ही हैं प्राइवेट स्कूल्स में 6-6, 8-8 हज़ार बच्चे होते हैं, तो ऐसे चलते रहते हैं और लोग कोशिश करते हैं कि मार्क्स ज़्यादा देते रहें जिससे बच्चे आएँ। अब गवर्नमेंट स्कूल्स में भी थोड़ा ऐसा होता है, वो इसलिए होता है कि वो बड़े ऑफिसर से डरते हैं और उनको लगता है कि नहीं, हमारा स्कूल अगर अच्छा नहीं देखेंगे तो हम पे इंक्वायरी होगी, और वैसे भी हमारा सिस्टम बहुत डिस्ट्रस्ट का सिस्टम है, हम एक दूसरे पे भरोसा करके आगे बहुत कम बढ़ते हैं, हम दूसरे पे ना भरोसा करके उनके खामियां निकाल के उस पे सोचते हैं। तो इसके चलते मार्क्स बढ़ाए जाते हैं और लोग इस तरीके से चल ही रहे हैं, काफ़ी सालों से चल रहे हैं। और 21st century स्किल्स की जब हम बात करें तो पूरी दुनिया कह रही है कि हमको ऐसे स्किल्स की ज़रूरत है, स्किल्स यानी कि कौशल, बच्चों में ऐसे स्किल्स डेवलप करने की ज़रूरत है कि वो आगे चल के फ्यूचर के जॉब में काम कर पाएं, आज के जॉब में नहीं। आज का सिनेरियो ऐसा है कि हर 2-3 साल में नए जॉब आते हैं, तो जो आज हम कर रहे हैं आज से 3 साल बाद वो शायद रहे भी ना वो जॉब्स। तो अगर हम शिक्षा को देखें तो एक बच्चा लगभग 15 साल देता है शिक्षा को, स्कूली शिक्षा को, और उस समय हम देखेंगे 3 साल में अगर जॉब बदल रही तो 5 जॉब बदल चुके रहते हैं, इंजीनियरिंग या कोई भी डिग्री देखें,
और पुराना सिस्टम
पुराने हो जाते हैं, और हमारा करिकुलम हम देखेंगे तो 1980-1990 का ही सिस्टम चल रहा है। तो इसलिए ये 21वीं शताब्दी स्किल और इस चीज़ को इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे अगर ये नहीं कर पाएंगे तो आगे जब वो जॉब के लिए तैयार होते हैं तो वो कहीं नहीं देख पाते अपने आप को, और इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे देश में सुसाइड काफ़ी ज़्यादा है।
सुसाइड?
जी जी,
यंगस्टर्स में तो नहीं होता है ना, आई थिंक कॉलेज वॉलेज में शायद होता है,
टीनेजर्स में है। सो टीनेजर्स में CBSE ने ही डेटा रिलीज किया इस बार, पिछले 3 साल का औसतम देखेंगे तो 8,000-9,000 बच्चे सुसाइड करते हैं टीनेज में हमारे देश में। हमारे ही स्कूल के पास की घटना है, इस साल 10वीं का मैथ्स का एग्जाम दे के आया बच्चा, उसको लगा कि अच्छा नहीं हुआ है तो उसने मैथ्स के एग्जाम के दिन ही सुसाइड कमिट कर लिया, रिजल्ट तक नहीं देखे।
और रिजल्ट अच्छा आया?
रिजल्ट अभी उसकी पता नहीं चली है, लेकिन उसने पूरा बोर्ड एग्जाम भी नहीं दिया और उसने कर लिया। ऐसा प्रेशर हम बिल्ड कर रहे हैं, इसलिए स्किल्स की हम बात कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि बच्चा जहाँ है वहाँ से आगे जाए तो बच्चे में कॉन्फिडेंस बढ़े।
रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे, जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी, जो थम नहीं। आते हुए कदमों से भरी रहेगी राह गुजर जो हम गए तो कुछ नहीं एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं
हमारे साथ हैं अक्षय कुमार जी, ये हैं डायरेक्टर और प्रिंसिपल विश्व वेदांता स्कूल। आपके स्कूल में भी अभी आपने बताया कि ये ना के स्कूल में भी प्रॉब्लम था मार्क्स बढ़ाने
जी,
तो ये आपकी तो प्राइवेट स्कूल है ना?
जी जी।
प्राइवेट स्कूल में आप लोग का ही कंट्रोल है, क्यों बढ़ाते हैं
मार्क्स बढ़ाना? अब हम जब आए थे, मैं जब ज्वाइन किया था तो स्कूल नया था, स्कूल को एक इमेज बनानी थी, तो इमेज बनाना बहुत जरूरी रहता है। जैसे हम ब्रांड प्लेसमेंट बोलते हैं, जैसे हम देखेंगे तो जूते का सुनते ही, नाइकी सुनते ही बहुत खुशी होती कि बहुत अच्छा ब्रांड है, तो हमारा नाम अच्छा हो। और हमारे देश में हम सिर्फ रिजल्ट्स को देखते हैं और मार्क्स को देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि बच्चा सिंगिंग में अच्छा है, बच्चा राइटिंग में अच्छा है, या बच्चा गाना गाने लिखने में या डांस करने या स्पोर्ट्स में।
ब्रांड का काम
है। हाँ, स्कूल का ब्रांड रिजल्ट से बनता है, इसलिए मार्क्स बढ़ाते हैं जिससे एडमिशन आते हैं और फिर स्कूल फाइनेंशियली सस्टेनेबल होता है।
जैसे IIT है कॉलेज या SPGEN है, इनके स्टूडेंट्स को बहुत बड़े ऑफर मिलते हैं
जी
और कॉलेजेस से कम्पेयर।
हाँ जी,
ऐसी कोई बात होगी उसमें?
हाँ, बोल सकते हैं कि हमारे बच्चे जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनका कौन सा स्कूल है, तो मान लीजिए कि बच्चे का स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल लिखा है, तो उससे इंटरव्यूअर को लगता है कि अच्छे स्कूल से हैं तो ये ज़्यादा जानते होंगे, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऐसे ब्रांड काम करता है प्राइवेट स्कूल्स का, और इसीलिए मार्क्स बढ़ाते हैं कि बच्चे आएँ और नाम होगा तो इंटरव्यू के लिए जाएगा, कहीं भी जाएगा। तो जैसे विश्ववेदांता का नाम है तो फिर नाम देखते ही लोग संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ,
इनको तो ले लेना
चाहिए। बिल्कुल।
आजकल हम देख रहे हैं कि एटलीस्ट बॉम्बे में बहुत फॉरेन स्कूल्स आ गए हैं, तो क्या डिफरेंस है? वो सिस्टम ही अलग फॉलो करते हैं या अपना इंडियन सिस्टम चलता है?
जी, उनके सिस्टम अलग है, और जो हम बोल रहे हैं कि 21st century स्किल्स, उन पे वो फोकस करते हैं, और उनका तरीका ये है कि वो स्किल्स बिल्ड कर पाए, नॉलेज पे उतना फोकस नहीं करते हैं। तो स्किल्स है तो नॉलेज तो एक माध्यम है, वो हम धीरे धीरे गेन कर लेते हैं और ये स्किल्स के द्वारा उसको हम गेन कर लेते हैं। तो ये स्किल्स पे बहुत फोकस करते हैं और जी हम 21st सेंचुरी स्किल्स में कुल मिला के 4 स्किल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्किल्स भी होते हैं जो जरूरी रहते हैं। तो ये जो नए बोर्ड है या इंटरनेशनल बोर्ड है, इनको ये समझ में आ गया है कि हम इस तरीके से ही आगे बढ़ेंगे तब होगा, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि कल क्या होगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में हम मोबाइल देखते हैं कि हर नए साल एक नया मोबाइल फोन लॉन्च होता है, एक नया आईफोन आता है, एक नया वन प्लस आता है। जब इतने तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है तो इतने ही तेजी से हमारे जॉब मार्केट चेंज होने वाले, इतने ही तेजी से हमारे बच्चों को ही सीखना पड़ेगा। तो हम इतने तेजी से हम एक साल में स्कूल में नॉलेज नहीं देख सकते। तो हम ये स्किल देंगे, ये स्किल देने से वो नॉलेज मिलेगा और वो नॉलेज और स्किल मिला के बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे।
फीस के बारे में मुझे पूछना है आपसे
जी,
कि जो मॉडर्न स्कूल्स हैं,
हाँ जी,
इनकी फीस आजकल लाखों में सुन रहा हूँ।
मैं
जब स्कूल में था 7 रुपया पर मंथ था मेरा। तो मैं बात कर रहा हूँ 60 साल पुराना।
जी जी जी।
लेकिन 7 रुपीज,
हाँ जी, बहुत।
और अभी सुनते हैं कि भैया ना महीने का मिनिमम 50,000 रुपीज लगता है।
बिल्कुल।
तो ठीक है, मतलब कुछ लोग सह सकते हैं, बैर कर सकते हैं, वॉट अबाउट दी होल कंट्री? तो सारे इतने पुअर लोग हैं इंडिया में।
जी जी।
तो ये लोग इस टाइप की फीस कैसे बैर कर सकते हैं?
तो इसमें दो तरीके से हम देख सकते हैं। तो फी लेने वाले स्कूल बेसिकली उन्हीं मार्केट को टारगेट करते हैं जो मार्केट उनके पास आ सकता है, और बाकी देखेंगे कि सबको केटर करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट स्कूल्स की क्वालिटी सुधरने की ज़रूरत है और उसमें काफ़ी मेहनत लगेगा। लेकिन मैं फीस पे अभी बात करूं तो फीस हम देखते हैं कि जनरली मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में लाखों में जाते हैं, बाकी छोटे शहरों में थोड़ा अभी भी हज़ारों में रहते हैं। तो लाखों में जाने का मेन रीज़न ये है कि यहाँ का रियल इस्टेट इतना महंगा है। तो एक स्कूल खोलना, एक एकड़ की जमीन ले पाना ऐसे शहरों में, ये तो कहीं छुपी हुई बात नहीं है कि एक एकड़ जमीन करोड़ों में आएगी यहाँ। तो वो स्कूल खोलना, फिर उस स्कूल का पैसा भी आना, फिर उस स्कूल में टीचर्स रखना, ऐसे क्वालिटी टीचर की वो क्वालिटी दे पाए, उनकी सैलरी, ये सब मिला के अपने आप कॉस्ट इतना बढ़ जाता है कि ये फीस लेना एक तरीके से मजबूरी हो जाती है।
टीयर 2, 3, टीयर 3 में ठीक है,
ठीक है, थोड़ा कम है। तो जैसे वहां भी मुश्किल होगी। हमारा स्कूल तो काफी हद तक अफोर्ड कर रहे हैं, हमारे स्कूल में, क्योंकि औसतम हम 20,000 से 25,000 सालाना लेते हैं सीबीएसई बोर्ड होते हुए भी। औसतम सीबीएसई बोर्ड में फीस देखेंगे तो 70,000-80,000 के आसपास जाता है सालाना। तो ये बड़े शहरों से कम है, लेकिन हाँ, ये स्कूल भी थोड़े भारी पड़ते हैं आम जनता को कि वो जा पाए। हमारे स्कूल में भी जनता आती है और बोलती कि आपके फीस ज्यादा है। तो मेरे को ये लगता है कि हमको मार्केट देख के फीस रखना चाहिए, तो उससे बहुत हद तक बैलेंस हो जाता है चीजें।
हुस्न की बिजलियाँ तेरे गालों पे हैं, जुल्फ की बदलियाँ तेरे, रामन की खुशबू से महके चमन, संग मरमर के जैसा ये तेरा बदन। हसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। बंधन है प्यार का, देखो टूटे न सजनी,
ये जन्मों का साथ है, देखो छूटे न सजना।
तेरे आंचल की छांव के तले मेरी मंजिल मुझे मिल गई, हसी वाली। वादियाँ ये खुला आसमां
आ गए हम कहाँ है मेरे साजना
इन बहारों में दिल की कली खिल गई
मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई
ये हसी वादियाँ ये खुला आसमां
आ गए हम कहाँ है मेरे साजना
गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया अप टू अ सर्टेन एज कि भी एजुकेशन इज कंपलसरी
जी
पर ये सब अफोर्ड कर पाते हैं क्या छोटे छोटे गांव में उनके पास इनकम ही क्या है तो बच्चों को भेजते ही नहीं है स्कूल
तो इनकम उनकी इतनी नहीं रहती है लेकिन उनका एम्बिशन बहुत हाई रहता है तो कहीं ना कहीं से वो बहुत मेहनत करते हैं मैनेज करते हैं और प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं क्योंकि वो मानते हैं और ये देश मानता है कि हमारे सरकारी स्कूल अच्छे नहीं हैं तो इसलिए उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो प्राइवेट स्कूल में भेजें मेरा सपना तो यही है कि हम जरूर ये स्कूल चला रहे हैं लेकिन आखिरी में अंत में हमको सरकारी स्कूलों के साथ ही काम करना पड़ेगा एक स्कूल से हम दुनिया नहीं बदल सकते क्योंकि हम देखेंगे मेरे को छत्तीसगढ़ का तो नहीं पता लेकिन महाराष्ट्र का पता है महाराष्ट्र में लगभग 2.25 करोड़ बच्चे हैं और इनमें से लगभग 2.25 करोड़ सरकारी स्कूल में है तो हम देखेंगे कि बच्चों के मामलों में सरकारी स्कूल में ज्यादा है प्राइवेट स्कूल में बहुत कम है तो इसलिए एक प्राइवेट स्कूल चलाने से कुछ नहीं होने वाला सरकारी स्कूलों की क्वालिटी सुधारने की जरूरत है ये जरूर सही है कि अफोर्ड करने में मुश्किल होती है लेकिन क्या करें बच्चों को अच्छा शिक्षा देनी है और उनको अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना है तो मजबूरन पेरेंट्स कहीं से बहुत मेहनत करके और हिंदी में बोला जाए तो जुगाड़ करके भेजते हैं अपने आप पे बोझ रखकर
मुझे कभी कभी है ना कॉलेजों में और स्कूलों में बुलाते हैं टॉक करने के लिए तो करीब साल भर पहले मैं ना दादर में यहाँ पे दादर आप तो शायद नहीं जानते होंगे एक मराठी मीडियम गवर्नमेंट स्कूल है
हाँ जी
वहाँ बुलाया था मुझे
हाँ जी
जाने के बाद देखा मैंने कि सारे सारे के सारे क्लासरूम एम्प्टी हैं
अरे
और एक ही फ्लोर पे उन्होंने इंग्लिश मीडियम शुरू करा था वहाँ पे कुछ बच्चे थे
अच्छा
तो मैं पूछा ये ऐसा क्या हुआ तो बोले अभी कोई मराठी मीडियम में डालने नहीं चाहता है बोले ड्राइवर होए कोई भी होए घर का सर्वेंट होए अपने बच्चों को हर एक इंग्लिश मीडियम में डालना चाहते हैं एक्चुअल में द स्कूल सच अ ब्यूटीफुल स्कूल 5 माले की स्कूल बिल्डिंग
अच्छा
पूरा खाली पड़ा था तो ये भी बड़ा शिफ्ट हो रहा है
जी
फ्री का एजुकेशन भी लोगों को नहीं चाहिए
एक तरीके से देखेंगे तो थोड़ा समझेंगे तो फ्री का एजुकेशन तो है नहीं क्योंकि टैक्स तो हम देते हैं और टैक्स से ही सरकार को पैसा मिलता है और सरकार उस पैसे को सैलरी देती है टीचर्स को तो फ्री में तो नहीं है हम हमारे हार्ड अर्न मनी मेहनत से कमाए पैसों को हम टैक्स के रूप में देते हैं और फिर उनसे गवर्नमेंट स्कूल्स चल रहे हैं तो फ्री नहीं है
मतलब स्टूडेंट्स के लिए फ्री है?
हाँ, स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। उस तरीके से हम देखेंगे तो स्टूडेंट्स के लिए जरूर फ्री है, लेकिन ये शिफ्ट जरूर है कि जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि क्वालिटी नहीं है तो लोग उसी की ओर भाग रहे हैं जहाँ क्वालिटी उनको मिलेगी। तो वो चाहे वो लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो एनजीओ द्वारा गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो, लोग वहाँ ज्यादा जाना चाहते हैं क्योंकि लोगों को विश्वास होता है कि वहाँ ज्यादा क्वालिटी मिल रही है
या उनके लिए जॉब्स बेटर हो,
जॉब्स बेटर हो जाएंगे। हम ये देखेंगे तो इंडिया में भी हर जॉब की रिक्वायरमेंट तो ये है ही कि इंग्लिश बोलना है, आना चाहिए, इसलिए चाहते हैं और हर पेरेंट चाहता है कि उनके बच्चे को इंग्लिश आए। और अगर गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश नहीं सिखा पाए या कोई भी स्कूल इंग्लिश नहीं सिखा पाए, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, पेरेंट्स तुरंत उनको शिफ्ट करके ऐसे स्कूल में डाल देते हैं जहाँ पे इंग्लिश हो और इंग्लिश बोल पाए बच्चे। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया बन गया आजकल एडमिशन के लिए कि बच्चे, हमारे एरिया में तो बहुत बड़ा क्राइटेरिया छत्तीसगढ़ में कि ऐसे ही स्कूल में डालेंगे जहाँ इंग्लिश आए। हमको नहीं आता लेकिन हमारे बच्चों को आना चाहिए।
ऑल इंडिया में हो गया है?
जी, ऑल इंडिया में हो गया।
मेरे दो एक्सपीरियंस हैं इन एजुकेशन।
हाँ जी,
और शायद मैंने ये बात पहले भी बोली है। हमारा बहुत पुराना एक कुक था, खाना बनाने वाला घर पे।
हाँ जी।
तो एक दिन आके बोलता है मैं कल से नौकरी छोड़ रहा हूँ। बोले क्या हो गया तेरे को, कोई तकलीफ हो गई? हमने कुछ बोल दिया? नहीं, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया।
अरे वाह।
तो उसको बोला मैंने कि तू तो अपना करना, तेरे को क्या तकलीफ है, वो बन गया, वो तो बन के जाने वाला है, तुम्हारे साथ थोड़ी रहेगा।
जी।
सेम सिमिलर वे में हमारे घर के बाहर एक केले का ठेला वाला बैठता था।
हाँ जी।
तो एक दिन जब मैं निकल रहा था तो वहां पर मैंने एक यंग बॉय को देखा है, मैन, उसी के साथ बैठा था। तो मैं उसको बुलाया कि साथ में कौन बैठा है, तुम्हारा बेटा है? बोला हाँ मेरा बेटा है। तो बोला इसको भी तू इस जिंदगी पर केले के ठेले इस पे बिठाएगा? बोला नहीं, जॉब नहीं मिल रहा है, वो कंप्यूटर साइंटिस्ट है।
अरे बाप रे।
तो उसको मैंने अपने ऑफिस में बुला लिया।
हाँ जी।
और इमीडिएटली नौकरी दे दी।
जी।
और आज के दिन हमारा वन ऑफ आर स्टार परफॉर्मर है वो।
बहुत बढ़िया।
तो ये चीजें होती हैं जब ओल्डर पीपल सी इसको अच्छा एजुकेशन दिए तो इतनी बढ़िया नौकरी मिल गई।
जी,
दैट इज द चेंज दैट इज हैपनिंग।
यस।
सारे गामा को लेकर गाते चले, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। ए संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो में गाओ। निकले रो सवेरा दूर करे अंधियारा, रे से रेशमी किरणों ने खूब किया उजियारा।
चले
से गुनगुन गा 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 मा से मध्यम मा 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 पा से एक पुजारी
ता तारी ग गम पा कम ग कम पा पमरे मा ग
हाँ ता तारी ग गम पा कम ग कम पा पमरे ग ता गा से गुनगुन करता है घूमे क्यारी क्यारी माँ से मीठे बोलों में पासे एक पुजारी नहीं है धनी सी दीदी दीदी के साथ है सारे ला धूप सुनहरी है ये नींद नशीली लागे धास धूप सुनहरी है ये नींद नशीली लागे
सरगम हो गई पूरी अब क्या होगा आगे अरे सरगम हो गई पूरी अब क्या होगा आगे
हाँ सा सारे ग ग म प प म ग म प ध ध प म प ध नि सा प
सारे ग ग म प प म ग म प ध ध प म प ध नि सा प
सरगम के साथ ही सरगम की धुन पे गाते चले
सरगम के साथ ही सरगम की धुन पर गाते चले
पापा नहीं है धनी सी दीदी दीदी के साथ है सारे सारे के सारे गम को लेकर गाते चले
गाते चले
सारे
आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूंगा
जी।
आप एजुकेटर हैं
हाँ,
टीचर हैं
हाँ,
आपका खुद का एजुकेशन क्या हुआ है क्या करा
जी,
आपने?
तो ये काफी चौंका देने वाली बात होगी मैं ग्रेजुएशन में मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और मैं मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मेरी पूरी शिक्षा इसी हिसाब से हुई है कि साइंस मेरा मेजर सब्जेक्ट रहा है और मुंबई में भी जब रहा और उसके बाद रायपुर भी जब शिफ्ट हुए तो मैंने साइंस ही चुना और मैथ्स ही चुना और इंजीनियरिंग में ही किया लेकिन ये सब पढ़ते समय मैंने देखा कि मेरे को एजुकेशन में काम करने की रुचि है और फिर शुरू तो किया इंजीनियरिंग के बाद काम और उसमें भी सपना ये था कि 2 साल काम करेंगे और MBA करने चले जाएंगे
नॉर्मल
जी नॉर्मल सोचा था
या।
लेकिन अब 5 साल हो गए हैं और मैं अभी भी स्कूल में ही काम कर रहा हूँ इस दौरान मैंने ये जरूर किया है कि मैंने एजुकेशन में डिप्लोमा कर लिया है NIOS से तो एजुकेशन की ओर भी बढ़ गए हैं तो शिक्षा इंजीनियरिंग की जरूर है लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इंजीनियर ही क्रिटिकली एनालाइज कर पाते हैं प्रॉब्लम को और फिर उसको देख पाते हैं इसलिए हमारे जैसे इंजीनियर्स अगर ज़्यादा शिक्षा में आए तो ये क्रिटिकली एजुकेशन के प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे उसका सल्यूशन दे पाएंगे और थोड़ी शिक्षा की डिग्री लेंगे और फिर उसके बाद शिक्षा में अच्छा काम कर पाएंगे
हमने पढ़ा आपके प्रोफाइल में कि आपकी स्कूल जो है टीचर्स को भी ट्रेन करती है
जी तो टीचर्स को भी ट्रेन करती है और हम ये मानते हैं कि हर साल टीचर्स का ट्रेनिंग जरूरी है क्योंकि जैसे हम ये देखेंगे कि जॉब चेंज हो रहा है तो हर जॉब चेंज के लिए शिक्षा और टीचर्स की भी ट्रेनिंग की जरूरत है और उस ट्रेनिंग में हम ये देखते हैं कि और क्या नए पेडागोजी आ गया और क्या नया करिकुलम आ गया है, क्या माइंडसेट चेंज हो रहा है, उस चीज़ को हम टीचर्स के साथ करते हैं। मैं खुद एक ट्रेनर भी हूँ टीचर्स का, और हर साल पूरा देश फंसा हुआ है कि हमको मार्क्स चाहिए, नॉलेज चाहिए, रोट लर्निंग होगा उससे हमको जॉब मिल जाएगा, और क्राइटेरिया यही है कि 90% आया तो ये कॉलेज में चले जाओ, 90% आया तो वो जॉब मिल जाएगा, और हम तो उसके लिए हम मरते रहते हैं, और टीचर्स भी यही सोचते हैं। लेकिन हम ये देखते, जैसे आप ही ने अभी दिया एग्जाम्पल दिया कि वो केले के ठेले के बच्चे थे और आपने एम्प्लॉय किया और अभी स्टार परफॉर्मर है आपका, तो ऐसे स्किल्स रहते हैं बच्चों के पास, टीचर्स आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए टीचर्स को ट्रेन करना जरूरी है कि ये माइंडसेट शिफ्ट हो, कि हम मार्क्स को ही ना देखें और सब्जेक्ट्स को ही ना देखें, इन सब्जेक्ट्स में स्किल्स क्या है, बच्चे वो कर पा रहे हैं क्या, वो कर पा रहे हैं तो उनको वहां से आगे कैसे बढ़ाया जाए, कि उन स्किल में कैसे प्रेरणा दी जाए। जैसे हमारे स्कूल में ही एक बच्चा था, तो उसके पेरेंट ने उसको साइंस लेने में मजबूर किया 11th में। अच्छा। लेकिन वो एक बहुत बढ़िया स्किलफुल क्रिकेट में बॉलर था और बैट्समैन भी, एक तरीके का ऑलराउंडर। अच्छा। हम जानते हैं हमारे टीम में ऑलराउंडर्स की कमी है, तो वो एक ऑलराउंडर था। तो 10वीं में हमको ये समझ में आया, 11वीं में उनके पेरेंट्स ने फोर्स किया कि तुम साइंस ही लो, और हमने काफी बोला कि नहीं उसकी एक्यूमेंट नहीं है, वो नहीं कर पाएगा साइंस, उसको कोई और सब्जेक्ट देते हैं, क्रिकेट में फोकस करने दीजिए, लेकिन उनके पेरेंट्स माने नहीं, तो वो साइंस किया, लेकिन उसने क्रिकेट में भी आगे बढ़े। तो क्रिकेट में अभी वो छत्तीसगढ़ के अंडर 19 टीम से खेलता है।
अच्छा, तो किसी दिन मतलब ऑल इंडिया में चले जाएंगे।
जी बिल्कुल, और छत्तीसगढ़ के रणजी टीम के लिए खेल रहा है, MS धोनी अकेडमी ने उसको सिलेक्ट कर लिया है खेलने के लिए। बस दुख की बात यह है कि वो फिजिक्स में अभी 12वीं के बोर्ड में थोड़ा फेल हो गया है। तो ऐसे हम परेशान कर देते हैं हमारे बच्चों को। सचिन तेंदुलकर का ही एग्जांपल देखें, उन्होंने 10वीं के आगे पढ़ाई नहीं की है, उन्होंने क्रिकेट फॉलो किया और अभी 10वीं में उनके लिए एक चैप्टर है। तो ये बच्चा भी ऐसा हो सकता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो इसलिए टीचर्स की ट्रेनिंग की जरूरत है कि वो ये आइडेंटिफाई कर पाए।
मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि हम बॉम्बे में बैठे हैं, वो तो हम समझ सकते हैं कि दे हैव वेरी गुड एजुकेशन, टीचर्स, एवरीथिंग। सेकंड टायर एंड थ्री टायर में भी ये सब सोच चलती है जो आपकी सोच है?
नहीं, नहीं चलती है ये सोच,
नहीं
तो
होती है ना।
बहुत मुश्किल हुआ है पिछले 5 साल में, बहुत ही ऊपर नीचे मेरे को झेलना पड़ा है, और झेलना पड़ा है बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए काफ़ी भारी रहा है। इसमें से पिछले साल मैं डिप्रेशन में भी था, क्योंकि मेरे को ये दिख रहा था कि मेरे थॉट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं लोग, तो उससे चलते काफ़ी तकलीफें हुई हैं। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि एक्सेप्ट कर रहे हैं, थोड़ा सहायता TV का तो मिलता ही है, इतने रियलिटी शो हो गए हैं, इतने सारे स्पोर्ट्स इवेंट हो गए हैं, तो लोगों को अब थोड़ा भरोसा आ रहा है कि नहीं, बच्चे इनमें भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन Tier 2, Tier 3 में बहुत मुश्किल तो होती है ये सब लोगों को समझाने में। वो अभी भी वहीं फंसे हैं कि मार्क्स ही है, और मार्क्स से ही ज़िंदगी बनेगी, और मार्क्स से ज़िंदगी बनेगी तो जॉब, और जॉब वो भी कि सिर्फ सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब भी नहीं देखते हैं वो।
अभी तक वही चल रहा है।
जी वही चल रहा है,
बैंक, सरकारी, रेलवे,
रेलवे वही चल रहा है। 28-29 की उम्र हो जाती है, घर में बैठे हैं बच्चे, लेकिन सरकारी जॉब का एग्जाम दे रहे हैं। तो लोग ये नहीं देख पा रहे हैं कि जिंदगी के 7-8 साल बर्बाद हो रहे हैं, लोग ये देख रहे हैं कि सरकारी जॉब ही चाहिए और मार्क्स ही लाना है, और ऐसे कर रहे हैं। आश्चर्य की बात है, ऐसे फंसे हैं। लेकिन
नीला गगन, नीला नीला ये गगन, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, जिसके बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन, दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है,
ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां। ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के, ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है,
ये कौन चित्रकार है, ये कौन
कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो, चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की, कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की, अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है,
ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
हमारे साथ हैं अक्षय कुमार जी, डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल विश्वा वेदांता स्कूल, ये हैं रायपुर से। गवर्नमेंट स्कूल तो आपकी नहीं है
जी,
लेकिन आपका इंटरेक्शन बहुत है, आप बता रहे थे
जी
गवर्नमेंट के साथ
जी।
तो क्या करना पड़ता गवर्नमेंट के साथ, इज इट फंडिंग?
नहीं, तो फंडिंग तो नहीं करते हैं हम
गवर्नमेंट करती है क्या?
गवर्नमेंट भी फंडिंग नहीं कर रही है हमको, हमारा प्राइवेट स्कूल ही है और हम फीस के थ्रू ही चल रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स जो फीस देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ हम काम बहुत कर रहे हैं, तो पिछले 3 साल से हमने साइंस एग्जीबिशन किया है, जिसमें हम ये मानते हैं कि साइंस हमारी जिंदगी में है, साइंस एक कोई अलग सी चीज नहीं है जिस तरीके से हमने बना दिया है हमारे शिक्षा में। तो उस थीम पे चलते हुए हमने 3 साल से साइंस एग्जीबिशन किया और इसमें हमने पहले साल तो गवर्नमेंट स्कूल्स को देखने के लिए बुलाया, तो लगभग 20-30 स्कूल आए, 1,500-2,000 बच्चे आए देखने के लिए 2 दिन के दौरान। दूसरे साल से हमने उनको अपने खुद के मॉडल भी लगाने दिए, आप भी आइए, आप भी देखिए, आप भी समझाइए जो क्राउड आता है, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा ये चीज़। और उनके स्कूल्स में हमने कंपटीशन भी रखा था छोटा सा, तो कुछ अवार्ड भी जीत के गए। तीसरे साल जब वे आए तो उन्होंने बोल दिया कि आप हमारे साथ काम कीजिए, क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमको लगता है आपका स्कूल अलग है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल कभी गवर्नमेंट स्कूल को नहीं बुलाते इवेंट में, वो दूर रहते हैं सब चीज़ों से। तो उन्होंने बोला हमारे साथ काम कीजिए, तो उससे गवर्नमेंट के साथ काम करने का सिलसिला चालू हुआ। इस साल हमारी कोशिश ये है कि विश्व वेदांता एक मॉडल स्कूल बने, जिसमें ये 21st सेंचुरी स्किल्स और लाइफ स्किल्स सब चीज़ की हम बात करें और बच्चों को सिखाएं, और धीरे धीरे आसपास के क्लस्टर में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको हम ट्रेन करते जाए इन चीज़ों में, तो वो हमारा स्कूल देखने आएंगे, खुद अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करेंगे और वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये काम चालू किया है। उसके साथ ही एक बहुत ही मज़ेदार बात ये हुई है कि पिछले दिसंबर में महाराष्ट्र से कुछ टीचर्स और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हमारे स्कूल देखने आए थे, उनको काफ़ी अच्छा लगा हमारा स्कूल, तो जनवरी में उन्होंने मेको 21st सेंचुरी स्किल्स में एक ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया और मैं पुणे गया इस चीज़ के लिए, और मैंने वहाँ 40 टीचर्स और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी लगभग 4 से 5 घंटा, और वहाँ से गवर्नमेंट के साथ काम करने का बहुत ही मजबूत सिलसिला चालू हुआ। अब उनमें से एक क्लस्टर के साथ महाराष्ट्र में मैं काम करूँगा, जिसमें हम ऐसे शिक्षा बनाएंगे कि गाँव की शिक्षा प्लस शहरी शिक्षा मिला के उस डिस्ट्रिक्ट में हम काम कर पाएँ, तो ये चालू हुआ है अभी।
हमने अगर कोई चीज़ मिस करी है तो आप ही बता दीजिए, आपके बारे में, आपके एजुकेशन के तरीके में।
तो पहले तो थोड़ा मैं, बहुत देर से हम बात कर रहे हैं 21st सेंचुरी स्किल्स की, तो ये क्या है ये थोड़ा बता दूं कि लोगों को भी पता चले। तो 21st सेंचुरी स्किल्स दुनिया ने बोला कि चार हैं। पहला है क्रिटिकल थिंकिंग, दूसरा है क्रिएटिविटी, तीसरा है कम्युनिकेशन और चौथा है कोलैबोरेशन। हाल ही में दो और जुड़े हैं, कॉन्फिडेंस और कंपैशन। थोड़ा थोड़ा हर छह के बारे में बात कर दूं। क्रिटिकल थिंकिंग, अपने ही ज़िंदगी से एक एग्जांपल दूंगा कि ये जो पुणे की ट्रेनिंग थी जो मेरे को देने आनी थी, तो मेरे दिमाग में यही रास्ता आ रहा था कि रायपुर से मुंबई आएंगे फ्लाइट से और फिर बाई रोड पुणे चले जाएंगे। तो जिस दिन आना था उस दिन फ्लाइट की टिकट 21,000। अब मैं डर गया, इतना पैसा तो हम देंगे नहीं, 21,000 उसमें तो हम दुबई घूम के आ जाएंगे। तो मैं टेंशन में, मेरा पहला अपॉर्चुनिटी जा रहा था। तो फिर थोड़ा सोचे टेंशन में भी सोचे, तो ये दिमाग में आया कि वाया हैदराबाद जा सकते हैं। तो वाया हैदराबाद देखे तो टिकट 6,000 में मिल गया। और यही क्रिटिकल थिंकिंग, टेंशन ये भी हो सकता कि घर बैठ गया अभी छोड़ो नहीं जाएंगे, लेकिन टेंशन में सोच पाए, नया रास्ता निकला, ये क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिएटिविटी जिंदगी में हर चीज़ में है। हमने लिमिट कर दिया कि आर्ट्स में ही है, लेकिन क्रिएटिविटी जिंदगी में हर चीज़ में है। एक माँ जिस तरीके से खाना बनाती है वो भी क्रिएटिविटी है, एक पापा किस तरीके से बच्चे को मैथ सिखाते हैं वो भी क्रिएटिविटी है। तो क्रिएटिविटी हर चीज़ में है। कम्युनिकेशन, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और जो जनता सुन रही है उनसे बात कर रहा हूँ, ये चीज़ हर बच्चा कर पाए तो ये कम्युनिकेशन तो बहुत ज़रूरी है, तो ये कम्युनिकेशन। चौथा है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन में हम देखेंगे कि सब साथ में मिलके कैसे आगे बढ़ सके। आज की दुनिया में कंपटीशन है कि उसको कैसे मारे और नीचे जाए, तो कोलैबोरेशन नई बात है कि हम सब साथ में मिलके कैसे जाएं। कॉन्फिडेंस, यानी कि जिस कॉन्फिडेंस या सेल्फ रिस्पेक्ट से मैं आगे बढ़ूँ उसको कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं। और कंपैशन, दूसरा कैसे फील कर रहा है उस चीज़ को जान पाना और उसकी मदद कर पाना उसके लिए, तो इसको कंपैशन। तो ये 21st सेंचुरी स्किल्स है। थोड़ा आखिरी में मैं बस बता दूं कि मैं एजुकेशन में कैसे आया। तो बचपन में मेरे कुछ टीचर्स थे जिनको मुझसे बहुत चिढ़ हुई। मैं हमेशा से अव्वल दर्जे के मार्क्स लाता था, लेकिन उनको, और लेकिन क्लास में मस्ती बहुत करता था मैं, तो उनको मेरे से बहुत गुस्सा आता था। तो उन्होंने हमेशा 9वीं से 12वीं मैंने देखा कि टीचर्स ने मेरे को चैलेंज किया, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मस्ती करते थे उनको लगता था और वो बच्चों को जानते नहीं थे। मैं क्लास टॉप करता हूँ ये भी नहीं पता था उन टीचर्स को। तो 10th में 96% तो आए, लेकिन टीचर्स ने एक बहुत गहरा इम्पैक्ट छोड़ा, क्योंकि मैं मैथ्स का ब्रिलियंट स्टूडेंट था और मेरा मैथ्स से इंटरेस्ट खत्म हो गया। इंजीनियरिंग के 2 साल मैं मैथ्स में लगभग फेल होते होते पास हुआ हूँ। तो इतना 90s में मार्क्स आने से मैं उस हद तक चले गया था। तो यहाँ तक टीचर्स मेरे को लेके चले गए थे। तो मेरे को एक चीज़ तो बहुत पक्की थी कि टीचर्स ऐसे नहीं होने चाहिए। कैसे होने चाहिए वो नहीं पता था। उसी दौरान इंजीनियरिंग में 2nd ईयर में किंग्स कॉलेज लंदन में एक कोर्स करने गया, तो वहाँ के टीचर ने हमको बोला कि आपको खाना खाना है खाओ, आपको क्लास में थोड़ी देर सोना है सो, आपको फ़ोन देखना है देखो, लेकिन उसके बाद टाइम बचेगा तो ध्यान दे देना। इतना फ्रीडम देने के बाद भी मैंने ये देखा कि मैं 95% टाइम ध्यान दिया। तो मैंने एक नए टीचर की परिभाषा खोजी उसमें, और फिर मेरे को ये समझ में आया कि हाँ टीचर हो तो ऐसा हो। उसके चलते मैं एजुकेशन में आ गया, क्योंकि हमारा स्कूल तो था ही, और फिर मैं 2014 से एजुकेशन में काम कर रहा हूँ।
शुक्रिया अक्षय कुमार जी।
जी जी, बहुत धन्यवाद।
ये थे हमारे साथ अक्षय कुमार, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ विश्व वेदांता स्कूल। मैं हूँ आपका विकास मित्र सिंह, मुझे तो आप हर हफ्ते सुनते ही हैं। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू।
रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साये बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साये बहार के। ओ राही
श्रोताओं, 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी मुंबई की FM गोल्ड प्रसारण सेवा में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम छूलो आसमान में विश्व वेदांता स्कूल के प्रिंसिपल एवं डायरेक्टर श्री अक्षय कुमार से की गई, नजारा टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर, IBG के प्रेसिडेंट और फॉर द रिपब्लिक ऑफ माली के ऑनररी काउंसिल विकास मित्र सेन की बातचीत। अब यह कार्यक्रम समाप्त होता है। निर्मिति सहायक सृष्टि जाधव एवं कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी।
साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, साथी न न कारवां है, ये तेरा इम्तिहान है, यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंज़िल तुझको इशारे, देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के, ओ राही ओ राही ओ राही।